اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر صلوات پڑھے محمد باقی محمد. عزادارانِ شہزادی کونین اہل بیت چینل لندن سے یہ لائف مجلس مادر حسنین بنت رسول زوجہ امیر المومنین بی بی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مجلسیں ہیں. یہ خمسہ مجالس ہیں, پانچ مجلسیں ہیں. 23 دسمبر سے 27 دسمبر تک روزانہ شام میں 7 بجے 7 PM لندن ٹائم پہ یہ مجلسیں ہو رہی ہیں. 1442 ہجرا 2020 کی یہ پہلی مجلس, آج فرسٹ مجلس ہے. آج انٹروڈکشن ہے. یہ میری مجلس کے 5 دن کی ٹاپک ہے, سیرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا. شہزادی کونین کی سیرت سے ہم اپنی لائف میں کیا امپلیمنٹ کریں. پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دو کہ میں نے آج مجلس کا آغاز, یہ پانچوں مجلس کا آغاز ایک بہت ہی ریکمینڈیڈ سورہ کہ جو نماز میں بھی پڑھا جاتا, حکم بھی ہے, واجب نہیں ہے, لیکن بہت ہی ریکمینڈیڈ سورہ جو 3 آیتوں کے اوپر ہے. مکی سورہ ہے, مکے میں نازل ہوا. اس وقت نازل ہوا جب اسلام صرف 5 سال کا تھا, 5 ایئرز کا اسلام تھا. اسلام آنے کے 5 ایئرز سے کے بعد یہ سورہ نازل ہوا. بہت ہی ریکمینڈیڈ سورہ, اولاد کے لیے بہت اچھا سورہ ہے. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو کثرت سے یہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں. یہ سورہ شہزادی کونین مادر حسنین کی ولادت باسعادت کے وقت نازل ہوا تھا. میں آج انٹروڈکشن کر رہا ہوں آپ کے سامنے شہزادی کی زندگی کا. تو موسٹ ریکمینڈیڈ سورہ ہے اگر کسی کو اولاد نہیں ہے. یہ سورہ کی تلاوت کرے اور اللہ کی بارگاہ میں شہزادی کونین مادر حسنین کا واسطہ دے کر دعا کرے کہ پروردگار تو مجھے اولاد عطا فرما اس سورہ کی برکت سے. اللہ اس کو اولاد عطا کرتا, اللہ قادر مطلق ہے. اور بی بی کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ. اولاد کے لیے بہت اچھا سورہ ہے, رزق کے لیے بہت اچھا ہے. خدا نخواستہ کسی کو رزق کا پرابلم ہے تو یہ سورہ کی تلاوت کریں. 10-10, 12-12 سال کے جو لوگوں کے پرابلمس تھے سورہ کوثر کی برکت سے. بہت ہی ریکمینڈیڈ سورہ. پوری 5 مجلسیں اس سورہ پہ پڑھ دو. لیکن جو میرا مقصد ہے, جو شہادت کے ایام ہے, بہت ہی مصیبت کے ایام ہے سننے والوں کے لیے بول رہا ہوں کہ ایام غم کے ایام شروع ہو گئے. مورننگ ڈیز ہیز بین اسٹارٹڈ. تو ہمارے لیے یہ سب سے عظیم ترین غم کا نام بی بی زہرا کا غم ہے. صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ وہ غم ہے کہ آج تک معصومین زمانے کا امام آج تک گریا کرتا ہے. اللہ نے اس سورہ کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر. یہ سورہ اس وقت نازل ہوا کہ جب شہزادی کونین کی ولادت ہوئی, مادر حسنین کی ولادت ہوئی. تو جب آپ کی برتھ ہوئی مکے میں تو مکے کے جتنے یہ کافرین اور مشرکین تھے, جس میں ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, عتبہ تھا, ولید ہے, خالد ہے, ابو سفیان, یہ سارے کافر اور مشرکین ظالمین نے مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, اس لیے کہ 5 سال کا اسلام ہوا تھا, 5 ایئرز اولڈ اسلام تھا, تو جو نئے نئے مسلمان بن رہے تھے ان پہ اذیت ہو رہی تھی, ان کو تکلیفیں دے رہے تھے, उन पर मुसीबत ढा दिया था उन लोगों ने, तो वो मुसलमानों को ये काफिरों मुशकीन कहते थे कि तुम्हारे रसूल के बाद बेटी पैदा होगी, अब उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी और उनका कोई वारिस नहीं होगा, कोई बेटा नहीं है उनके पास, एज भी 50+ हो गई थी। तो कहा कि अब 45 ईयर्स की एज हो गई थी, तो कहा कि अब रसूल के बाद क्या होने वाला है, बेटी से तो नस्ल नहीं चलती, लड़की से तो नस्ल नहीं चलती, और नस्ल ही खत्म हो जाएगी, जनरेशन ही खत्म हो जाएगा, तो फिर इस्लाम का क्या होगा, तो तुमको पलट के फिर हमारे मजहब में आना पड़ेगा, कुफर में आना पड़ेगा। बार बार ये ताना देते थे कि तुम्हारा रसूल अबतर है, अबतर हो गया, अबतर हो गया। ये सूरे में क्या है, बिस्मिल्लाह इन्ना आता है ना कल कौसर फसल ले रबी का वन इन्ना शान अका हो अबतर, तो तुम्हारा रसूल अबतर हो गया, अब नस्ल नहीं है। तो अल्लाह के रसूल तक जब ये बात गई तो सरकार को बहुत रंज हुआ, हर्ट हुआ। दोस्तों अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त करता कि उसके हबीब को हर्ट हो जाए, अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त करता कि उसका जो महबूब तरीन बंदा है जिसको उसने यासीन कहकर पुकारा, मुजम्मिल कह के पुकारा, ताहा कह के पुकारा, मुद्दसर कह के पुकारा, जिसको हमेशा या हबीब कह के पुकारा कि मेरा हबीब है, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, अल्लाह ये बर्दाश्त कैसे कर सकता था कि हबीब को रंज हो जाए। उन्होंने अल्लाह ने क्या किया, पूरा सूरा नाजिल कर दिया कि मेरे हबीब इन्ना आता है ना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने आपको कौसर अदा किया, फसल ले ले रब्बे का वनहर, आप जानवर को नहर करें, शुक्र करें, इन्ना शाने का हुआ लबतर, अब तक हबीब तुम नहीं हुए बल्कि अबतर वो हुए जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुमको अबतर कह रहे वो अबतर हुए। बस अल्लाह के रसूल को सुकून मिल गया। ये सूरह कौसर पहली चीज लफ्ज़े कौसर, कौसर पे थोड़ी देर बात करेंगे कि कौसर क्या है। मैंने क्यों कहा कि औलाद के लिए बहुत अच्छा है, प्लीज गौर से सुनना, और शहजादी कौनैन का वास्ता देके दुआ करना, हमेशा याद रखो अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा वास्ता मादर हसनैन का, सबसे बड़ा वास्ता ज़ौजाए अमीर अल मोमिनीन का है, सबसे बड़ा वास्ता रसूल की बेटी का है, एकलौती बेटी, इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं। जब भी तुम कोई प्रॉब्लम, इंशाल्लाह ये 5 मजलिसों में मैं बीबी जहरा से जो दुआएं हैं, शहजादी कौनैन से जो आमाल है, आमाल भी बताऊंगा, हर रोज आपको एक एक या दो दुआ दूंगा जो शहजादी कौनैन से मंसूब है, कि जिनका नाम मैं बार बार एक जुमला बोल रहा, अहले बैत चैनल लंदन से ये मेरी शहादत की मदीसें चल रही, आज मेरी हमसे की पहली मदीस है जिसमें 1442 हिजरा 2020 की मदीस है, कि इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं है, आजमाया हुआ वास्ता, कि जब तक जब कोई शहजादी कौनैन का वास्ता दे के अल्लाह की बारगाह में दुआ करे उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। सीरत बीबी जहरा की टॉपिक पे मेरे ये 5 मदीसें हैं। दोस्तों लफ्ज कौसर, कौसर क्या, क्या माने कौसर, कौसर वही के जो हौज़े कौसर है जन्नत में, जो इंशाल्लाह जन्नत में जब जाएंगे तो हम कौसर का पानी पियेंगे, कि जिसके साखी मेरा मौला हल्लाल मुश्किलात अमीर अल मोमिनीन शाह नजफ हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम शोहर बतूल जो है, क्या वो कौसर, क्या अल्लाह इशारा कर रहा उस कौसर की तरफ बात कर रहा, नहीं। मुख्तलिफ उलमा ने, मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने, जिन्होंने कुरान मजीद की तफसीर की, अहले सुन्नत की किताबों से बात कर रहा, हमारी तफसीर से बात नहीं कर रहा, हमारी तफसीर में तो यही है जो मैं बात कर रहा आपसे, अहले सुन्नत के उलमा ने ये लिखा, डिफरेंट उलमा ने डिफरेंट मजाज से लफ्ज कौसर का तशरीह की, लफ्ज कौसर का ट्रांसलेशन किया कि कौसर है क्या, कौसर है क्या। बाज उलमा ने कहा कि वही कौसर जो नहर है, जो रिवर है जन्नत में, उसकी तरफ इशारा है। बाज ने कहा कि कौसर के माने जन्नत में कुआं, एक वेल, उसका नाम कौसर है जिसकी तरफ अल्लाह ने इशारा। बाज ने कहा कि अल्लाह के रसूल को जो नबूवत मिली उसका नाम कौसर है। बाज लोगों ने कहा कि जन्नत में दरख्त है, ट्री, एक ट्री, उसका नाम कौसर है। ये सारे अहले सुन्नत के जो बड़े बड़े मुफस्सिरीन उन्होंने लिखा इस सूरे की तफसीर, लेकिन एक आलिम दीन जो अहले सुन्नत के, जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न अबू बकर, उन्होंने ये कहा कौसर, उन्होंने ये चारों चीजों को रिजेक्ट किया, डिनाइड किया, का ये इससे मतलब ये नहीं है, क्यों नहीं है, उन्होंने कहा ये कौसर और ये झाड़ और नबूवत, ये उन्होंने कहा नबूवत, अल्लाह ने इस आयत में उन्होंने कहा इन्ना आताने कल कौसर, सुने इन्ना आताने कल कौसर, कि ए मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया। उसके फौरन बाद क्या कहा, फसल ले ले रब्बे का वनर, मेरे हबीब आप फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करें, इमीडिएटली शुक्र अदा करें। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह कि कोई चीज अभी रसूल को अता हुई, इसलिए कि फे फसल ले, फे अरबी में याद रखो, अरबी का ये दस्तूर है कि जब दो सेंटेंसेस के बीच में फे आ जाए तो इसका मतलब है कि फौरन, इमीडिएटली, राइट नाउ, इसी वक्त। कहा अल्लाह क्या कह रहा है, इसी वक्त शुक्र अदा कर, इसका मतलब है कि अभी कोई चीज मिली। फे अगर दो सेंटेंसेस के बीच में आए, अब मैं आप इसको एग्जांपल देता हूं, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि बिस्मिल्लाह अहमद कुन फय कुन, कुन फय कुन, मैं इरादा करता हूं फौरन होता है। दो के बीच में यह फे आया, कुन फय कुन, ये अल्लाह कह रहा मैं इरादा करता हूं फौरन आता है, होता है। दूसरी जगह हदीस रसूल है कि बिस्मिल्लाह अहमद नहीं, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, मैं जिसका मौला फौरन अली उसके मौला है, ये नहीं कि एक दो तीन चार के बाद मौला, नो, बल्कि अली फौरन मेरे बाद फौरन। इसीलिए हम कहते हैं खलीफतहु बिला फसल, कोई फसल नहीं है बीच में, खलीफा है लेकिन फौरन, इमीडिएटली, राइट नाउ, रसूल के फौरन बाद। और यहां पे भी अल्लाह ने यही कहा, फसल ले ले रब्बे का वन, है मेरे हबीब फौरन तुम इसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करो, जानवर को नहर करो, शुक्र अदा करो और जानवर को नहर कर। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद वो मुफस्सिर ये कहता है कि नबुवत जो है अल्लाह के रसूल को उस वक्त नबुवत मिली कि जब आदम आब और गिल में थे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की खुद हदीस है कि जब आदम पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त भी मैं नबी था। ये नहीं कि जमीन पे आके रसूल बना, नहीं, मेरी खिलकत आदम से कई हजार साल पहले, खिलकत आदम से, वो अभी तक ये कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता कि नबी आदम की खिलकत कब हुई। नबी आदम को की दुनिया, दुनिया की बात नहीं करा, मैं उस वक्त की बात करा कि नूर है, जब आदम को खलीफ बनाया गया तो उस वक्त उससे कहीं हजार साल पहले अल्लाह के रसूल की विलादत हो गई थी, इन्हें नूर मोहम्मद खल्क हो गया था, नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद आ गया था। तो और उस वक्त भी रसूल था, अल्लाह के रसूल की खुद हदीस है कि आदम आबो गिल में थे, मैं उस वक्त भी नबी था। तो उसने ये कह के रिजेक्ट किया कि नबूवत जो लोग बोलेंगे, नबूवत जो है कौसर के मारे तो कहा नबूवत नहीं हो सकी, नबी शुरू से नबी है। उसके बाद कहा जन्नत में वो दरख्त जो ट्री है और जन्नत वो वेल, कहा ये सारी चीजें बाद में पैदा की गई, रसूल पहले से तो और नबी पहले से, जन्नत और वेल और सारी वो चीजें बाद में खल्क हुई। यहां पे अल्लाह ये कह रहा कि फसल ले ले रबे का, अभी कोई नेमत मिली है, अभी कोई नेमत मिली है जिसका अल्लाह शुक्र अदा करने के लिए कह रहा, जिसका अल्लाह अल्लाह बोल रहा कि थैंक यू बोलो मेरे को और जानवर को नहर करो, अभी कोई चीज नेमत मिली है। उसके बाद क्या कहता है अल्लाह, तो ये जो कौसर के माने, उन्होंने कहा कि कौसर के माने ना नबुवत है, ना जन्नत में वह हौज़े कौसर है, ना वो वेल है, ना वो ट्री है, ये सारी चीजें बाद में मिली अल्लाह के रसूल को और अल्लाह का रसूल शुरू से नबी है। और कौसर जो है अल्लाह के रसूल को अभी अल्लाह ने अता किया। तो कहा कि कौसर ये सब चीजें नहीं है, कौसर के माने हैं कसीर औलाद का होना, बड़ी औलाद का होना, कसीर औलाद का। और कहा कि ये जो कसीर औलाद है, ये कसीर औलाद किसी उम्मुल मोमिनीन के वतन से नहीं है, फिर बोल रहा किसी उम्मुल मोमिनीन के वतन से नहीं, बल्कि ये कसीर औलाद जो है वो बीबी फातिमत जहरा सैयदत निसा आलमीन के वतन से कसीर औलाद है, जिसका नतीजा आज आप देखेंगे कि 1400 साल हो गए, सबसे ज्यादा सादात औलाद फातिमा को जिबा किया गया, दीवारों में चुना गया, औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए हजारों लाखों की तादाद में, बीवी की औलाद को कत्ल किया गया, लेकिन उसके बावजूद आज पूरी दुनिया में औलाद फातिमा मौजूद है कि जिनके ऊपर सुबह और शाम दुरूद भेजा जाता है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने गौर किया, उसके बाद क्या कहा सूरे में, फसल ले रब्बे का वरना इन्ना शाने का हुआ अब तक। मेरे हबीब तुम अबतर नहीं हुए, जो तुमको अबतर बोल रहे वो अबतर हो गए। अब मैं आपसे पूछता कि कौन कह रहा था रसूल को अबतर? अबू सुफियान बोल रहा था मक्के में, जितने मक्के के काफिर मुशरिकीन थे, अबू सुफियान था, अबू जहल था, अबू लहब था, उदबा था, वलीद था, खालिद था, ये सारे सालिमीन। सही बुखारी भरी हुई है इनके फजाइल से कि किस तरह इन्होंने जुल्म किया अल्लाह के रसूल के ऊपर मक्के में, 13 ईयर्स क्या जुल्म किया। और उसके बाद इस्लाम की जितनी जंगें हुई किसके साथ हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरी मजलिस लाइव अलहबाद चैनल लंदन से जारी, तो मैं स्केच खींच रहा सारे मुसलमानों को कि बता रहा कि कौसर क्या है और जुल्म है रसूल, रसूल पे जो जुल्म किया वो किसने किया। दोस्तों शहजादी कौनैन की शहादत के वजह से कुछ बातें खुल के आएंगी सामने इंशाल्लाह। तो कौन है, जितने लोग रसूल को अबतर बोल रहे, प्लीज गौर से सुनना, रसूल को जो अबतर बोल रहे थे, जो ये बोल रहे थे कि अब रसूल का जनरेशन खत्म हो गया, रसूल की नस्ल खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई? रसूल को बेटी पैदा हुई इसीलिए नस्ल रसूल खत्म हो गई। आज मैं आपसे पूछता दोस्तों कि जितने लोगों ने रसूल को अबतर कहा, आज उनकी नस्ल है? अबू सुफियान का कोई बेटा है? अबू जहल का कोई बेटा है? अबू लहब का कोई बेटा है? खालिद वलीद किसी का बेटा है? अगर है भी, फिर बोल रहा और से सुनो, अगर है भी तो ये नहीं बोलते कि मैं अबू सुफियान का बेटा, मैं अबू जहल का बेटा, मैं अबू लहब, अगर है भी, इफ बोल रहा हूं, अगर है भी तो कोई ये नहीं बोलता कि मैं अबू लहब का बेटा, अबू जहल का बेटा, अबू सुफियान का बेटा हूं, खालिद वलीद का बेटा। उसके बरक्स औलाद फातिमा आज मौजूद है, तो अब वो अल्लाह का वादा पूरा हो रहा कि मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया, अब कयामत तक के लिए औलाद फातिमा जमीन पे रहेगी। कोई बुखारी है, कोई नखवी है, कोई रिजवी है, कोई काजमी है, कोई मूसवी है, कोई जैदी है, कोई आबिदी है, कोई जाफरी है, कोई बाखरी है, कोई तखवी है, कोई जवादी है, ये सारी औलाद फातिमा है जो कयामत तक बाकी रहेगी। इसलिए कि वादा अल्लाह का है कि हमने आपको कौसर अदा किया और हमारा वादा हमेशा सच्चा होता है, हमारा वादा हमेशा पूरा होता है। ये औलाद फातिमा की फजीलत के लिए सूरह कौसर नाजिल किया गया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपने गौर किया तो बीबी की विलादत के वक्त, उनकी बर्थ के वक्त, वो जब दुनिया में तशरीफ लाई, 20 जमाद सानी, अभी हिजरी पीरियड शुरू नहीं हुआ था, इसलिए कि हिजरी जो हमारा कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर, वो जब आप हिजरत करके गए मदीना, मदीने मुनव्वर, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, उस वक्त से हिजरा शुरू हुआ। जिस साल आपने ट्रैवल किया मक्के को छोड़ के काफिरों मुशरिकीन के जुल्म से छोड़ के गए, जब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हमारी मां बीबी खदीजतुल कुबरा का शहादत हुई, उसके बाद अल्लाह के रसूल को हुक्म आया कि मेरे हबीब मक्का छोड़ दो। ये दो ऐसे प्रोटेक्शन थे, दो ऐसी शील्ड थी, शील्ड कि अल्लाह के रसूल आराम के साथ मक्के में जिंदगी गुजार, 13 ईयर्स मक्के में जिंदगी गुजारी। जब ये दो बड़ी शील्ड, शील्ड भी बहुत छोटा लफ्ज है, जिस दो बड़ी ताकतें, दो बड़ी प्रोटेक्शन जब खत्म हुआ, तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब अब तुम यहां से हिजरत कर, उसके बाद हिजरा शुरू। तो बीवी की विलादत 20 जमाद सानी मक्के मौजमा में आपकी विलादत होती है, और आपके बाबा अल्लाह का रसूल, कायनात का मालिक, अव्वल नूर, अव्वल अखल, जिसके सदक़े में अल्लाह ने ये सारे यूनिवर्स को पैदा किया, जिसकी मोहब्बत के सदक़े में, कि जिसका आज हम कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह इसी कलमा पढ़ते हुए हम अल्लाह की बारगाह में जाए। अल्लाह का वो रसूल जब आपकी, आप आपके बाबा थे और आपकी माँ बीबी खदीजतुल कुबरा مادر شہزادی کون ہے؟ لاکھوں سلام ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو. ایک صلوات پڑھ لیں بی بی خدیجہ الکبریٰ جناب ابو طالب علیہ السلام کے نام پہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی خدیجہ الکبریٰ ایک دو منٹ سن لے. اس لیے کہ اگر میں بی بی کی شہادت کے مدرسے پڑھ رہا اور میں نے کہا کہ میں ایک ہسٹری بتا رہا ہوں اور میں ان کی ماں کا ذکر نہ کروں. بابا کا ذکر تو قرآن بھرا ہوا ہے, پورا قرآن کی فضیلت آپ جانتے ہیں. موقع ملے گا آگے بڑھ کے بتاؤں گا, لیکن ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کم ہوتا ہے, بہت ہی کم ہوتا ہے. افسوس یہی ہے کہ سب سے, غور سے سنو, سب سے زیادہ میرڈ لائف اللہ کے رسول نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزاری. میری ٹاپک سیرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, لیکن صرف بی بی خدیجہ کا ذکر اس لیے کر رہا کہ لازم ہے اگر ان کی بیٹی کا ذکر کرو, اگر آپ میں شہزادی کونین کو راضی کرو تو ان کی ماں کا پہلے ذکر کرو. بابا کا ذکر تو آپ سن رہے ہیں, ان کے ماں کا ذکر اس وہ ماں کہ جو ایسی پاک اور پاک, غور سے سنو پلیز, غور سے سنو, ایسی پاک اور پاکیزہ ماں, ایسی پاک اور پاکیزہ ماں کہ بی بی زہرا کے دو ٹائٹلز ہیں, دو القاب ہیں, طاہرہ اور صدیقہ. غور سے سنو, طاہرہ کے معنی ویری کلین, ویری پائس, ان سے زیادہ پائس کوئی نہیں. طاہرہ بولیں گے پاک اور پاکیزہ, اس کو طاہرہ بولتے. اور صدیقہ کس کو بولتے ہیں؟ جو صرف سچ بولے, جھوٹ کبھی بولے ہی نہیں. پھر بول رہا ہوں میں, صرف سچ بولے, کبھی زبان پہ جھوٹ کا ایک جملہ نہ, ایک سمال ورڈ بھی نہیں ہے, کبھی جھوٹ نہ بولے, اس کو صدیقہ بولے. کہ جو بول دے وہ ہو جائے, پھر بول رہا, جو بول دے وہ ہو جائے, اس کو صدیقہ کہیں گے. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ٹائٹل ہے کہ بی بی کو طاہرہ بھی بولتے ہیں, بی بی کو صدیقہ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی دونوں لقب طاہرہ اور صدیقہ بی بی زہرا کو بعد میں ملے ولادت کے بعد. ایکچولی یہ دونوں لقب ان کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کے تھے. اب سوچو بی بی زہرا کی ماں ہے اور کسی اور کی ماں نے, کتنی بڑی بات کہ جو فاطمہ کی ماں بنے اس کا نام خدیجہ. خدیجہ کو جو بی بی زہرا کو جو ہم طاہرہ اور صدیقہ بولتے, ایکچولی یہ طاہرہ اور صدیقہ لقب بی بی ان کی ماں خدیجہ کا تھا. اور کس نے دیا تھا؟ حیرت ہوگی حیرت, ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھو, ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو, دین یو ول نو کہ بی بی خدیجہ کو کون یہ ٹائٹل دے رہا اور کس زمانے میں دے رہا, جس زمانے میں اگر لڑکی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دیا جائے. مکے کی لائف کیا تھی؟ یو نو ویری ویل کہ مکے کے جاہل عرب جب ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی, اتنے بگ نوز تھے, اتنے بگ نوز تھے اور اتنے ظالمین تھے اور اتنی جہالت تھی. میں یہی تو کہتا ہوں کہ جہالتوں سے باہر آؤ. جہالت میں علی سمجھ میں نہیں آتا, جہالت میں کربلا سمجھ میں نہیں آتا, جہالت میں بی بی زہرا سمجھ میں نہیں آتی, جہالت میں اسلام سمجھ میں نہیں آتا. اگر امام علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو, جہالتوں سے مت سمجھو. اس لیے کہ خود میرے مولا علی کا جملہ ہے کہ جب راوی نے آ کے لوگوں نے کہا کہ مولا ہو از یور بگیسٹ اینیمی, مولا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے, ہو از یور بگیسٹ اینیمی, سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے کہ میرا مولا کہ لوگوں کے نام لے گا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. پیپل آر ایکسپیکٹنگ, کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امام علی نام لیں گے کہ یہ میرا دشمن ہے یہ میرا دشمن, لیکن وہ میرا مولا تھا, کائنات کا مالک تھا, میرا مولا تھا جو قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہا تھا, جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. علی نے کسی کا نام نہیں لیا, علی نے کہا میرا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ جہالت ہے, جہالت میری سب سے بڑی دشمن ہے. اگر جہالت زمین سے اٹھ جائے, علم آ جائے تو پوری دنیا علی کو مان لے گا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو بی بی زہرا کو کس نے کہا طاہرہ اور صدیقہ؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ کو یہ عرب کے جاہل عرب نے کہا. کس وقت کہا؟ زمانے جہالت میں کہا, اسلام آنے سے پہلے کا, اسلام آنے سے پہلے کا. یہ ایسی بزنس وومن تھی, اتنی ذہین تھی, اتنی انٹیلیجنٹ تھی. کیسا نہیں ہوگی انٹیلیجنٹ جو فاطمہ کی ماں بنے. اللہ آپ بولیں گے کہ تم بی بی خدیجہ کا ذکر کر رہے, بی بی زہرا کا نہیں. بی بی خدیجہ کا ذکر بی بی زہرا کا ذکر ہے، بی بی زہرا کا ذکر ان کی ماں کا ذکر. ماں آپ سوچو ماں ایسی، باپ کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول سے کس کا کمپیریزن ہے؟ جو 1,23,000 1,23,999 کا سردار ہو، جو جس کی وجہ سے، جس کی محبت کی وجہ سے، مودت کی وجہ سے اللہ نے سارے یونیورس کو پیدا کیا. حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم ملائکہ و سکان سماوات کی وعزتی و جلالی. اے ملائکہ اور آسمان کے رہنے والوں سن لو، اللہ کہہ رہا میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے ان کی محبت میں، ان کی محبت میں، ان کی محبت میں، ان کی محبت میں جو قصہ میں جمع ہے، ان کی محبت میں میں نے سب کو خلق کیا. کیا خلق کیا؟ کیا کیا کریٹ کیا؟ ہم ملائکہ تو سکان آسمان وہ عزت ہو جائے. انما خلقت السماوات مبنیات ولا ارض مدنیات ولا قمر منیرا ولا شمس مزیرت ولا ولا فلک یدور ولا فلک یسری ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہا ہو اللہ الخمسۃ الذین ہم تحتل کس. ان کی محبت میں میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا ورنہ بھوکے مر جاتے ہیں، صرف ان کی محبت. رسول اور آل رسول کی محبت، اہل بیت. تو جبریل نے کہا، کیا کہا؟ جب جبریل نے سنا، جبریل نے گھبرا کیا کہ کون ہے یہ تہ دل کے سامنے جو جمع ہے؟ آواز آئی، ہم فاطمتو و ابوہا و بالوا بنوا اللہ وسلم. میری کنیز خاص فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر علی ہے، ان کے دونوں بچے حسن حسین. ان کی محبت میں کیا؟ وہ رسول کی وائف تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ، اس رسول کی وائف تھی. ایک لوگ ایسی کہ موہ سب سے زیادہ جو میرڈ لائف گزری ہے، سب سے زیادہ بی بی خدیجہ کی. 27 ایئرس آپ نے اپنے رسول کے ساتھ میرڈ زندگی گزاری، میرڈ لائف گزاری، اپراکسیمیٹلی 27 ایئرس. جب اللہ کے رسول کی شادی ہوئی اس کے بعد 15 ایئرس آپ ساتھ رہی، 15 سال اعلان رسالت سے پہلے، پھر اعلان رسالت کے بعد اپراکسیمیٹلی 13 ایئرس جو مکے کی زندگی ہے، تو اپراکسیمیٹلی 27-28 ایئرس تک بی بی خدیجہ اپنے رسول اللہ کے حبیب کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اپراکسیمیٹلی 27-28 ایئرس. لیکن اتنی بڑی میرڈ لائف دوستوں کسی وائف کے ساتھ نہیں ہوئی. دوسری فضیلت بی بی خدیجہ کی یہ کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی، اللہ کے رسول نے کسی سے نکاح نہیں کیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات. احترام ہے خدیجہ، ریسپیکٹ آف خدیجہ. اور پھر ایک بات یہ واضح کر دوں، اس لیے کہ ہر انسان سن رہا مجھے، اہل بیت چینل لندن سے اس وقت پوری دنیا سن رہی، میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یاد رکھو، اللہ کے رسول نے کسی کو پروپوز نہیں کیا مدینے میں جا کے کہ آئی وانٹ ٹو میری یو، آئی وانٹ ٹو میری، نو، کبھی بھی نہیں کیا. پوری مکے کی، مدینے منورہ کی زندگی میں، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار، واٹ آئی ایم سیئنگ، جتنی آپ کی وائفس ہیں وہ ساری ازواج، ساری وائفس ان کے باپ لائے، باپوں نے لا کے اپنی بیٹیوں کو لائے اور لا کے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی سے آپ نکاح کریں. صرف رشتے کو ملانا چاہتے تھے، ریلیشن شپ کو ملانا چاہتے تھے کہ ہمارا رشتہ رسول سے ہو جائے. وہ سارے باپ لوگوں نے لا کے، ان کے فادرس لے کر آئے، لا کے بیٹیوں کو ملا. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، آئی کین پروف فرام دا ہسٹری آف اسلام. کچھ مجھے بتاؤ کہ کہیں بھی رسول نے پروپوز کیا؟ صرف ایک بیوی ہے جس کو مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول نے پروپوز کیا، صرف ایک بیوی کو پروپوز کیا، ایک وائف کو پروپوز کیا، وہ ویڈو تھیں، جناب ام سلمہ، جن سے بہت اچھے اعمال بھی. دا موسٹ ریسپیکٹڈ وائف، میں سب، ساری اللہ کے رسول کی بیویاں ریسپیکٹڈ ہیں، سب ام المومنین ہیں، ساری ازواج ام المومنین ہیں، کوئی غلط نہیں سمجھے. डोंट मिसअंडरस्टैंड, सारी मोमिनीन, सारी अल्लाह के रसूल की वाइफ जो है उम्मुल मोमिनीन है, लेकिन खतीजा के बाद सेकेंड नंबर पे अगर कोई है तो उम्मे सलमा, कि जिसको अल्लाह के रसूल ने खुद प्रपोज किया था। मैं बहुत हाथ रख के मजलिस पढ़, मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता, आप अपनी अपनी हिस्ट्री देख लो, मैं अपनी हिस्ट्री से बात कर रहा। अल्लाह के रसूल ने प्रपोज किया बीवी उम्मे सलमा को, और उम्मे सलमा विडो थी, जंगे ओहद में आपके हस्बैंड का इंतकाल हुआ था, बस इससे ज्यादा नहीं बोलता। उसके बाद इद्दत के बाद आपका निकाह जनाबे अल्लाह के रसूल से हुआ, यह अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग थी। बहरहाल अल्लाह बीबी खदीजा उस पर्सनालिटी का नाम है, उस हस्ती का नाम है। कि मैं खाली आपको एक वाकया सुनाता, कि यह रिवायत भी बीबी उम्मे सलमा से, यह रिवायत भी बीबी उम्मे सलमा से। पहली चीज बीबी खदीजा की जो अफजल फजीलत है, जो किसी बीवी को नहीं मिली, फिर बोल रहा बीबी खदीजा अल कुबरा की जो सबसे बड़ी फजीलत है वो ये है कि आप मादरे बीबी फातिमा थी सलाम अल्लाह, शहजादी कौनैन की मां थी। दूसरी बड़ी फजीलत ये कि नस्ल रसूल जो चली, अल्लाह के रसूल का जनरेशन जो चला, जो लफ्ज कौसर अल्लाह ने इस्तेमाल किया, क्या मेरे हबीब हमने आपको कौसर दिया, कौसर अता किया, तो वो जो नस्ल चली वो किससे चली, खदीजा की बेटी से चली। ये बहुत बड़ी फजीलत है जो किसी बीवी को नहीं मिली, कि नस्ल रसूल के जाहिरी तौर पर, मेरे एक जुमला गौर से सुनो, नस्ल रसूल की जाहिरी तौर पर जामिन जो है वो बीबी खदीजतुल कुबरा है। मैं सीरत बीबी ज़ैनब, मेरी टॉपिक है अलहबा चैनल लंदन से, ये 1442 हिजरा जमादिल अव्वल की जो शहादत के मजालिस है, ये खमसे की मेरी पहली मजलिस। तो जो नस्ल रसूल चली है कितनी बड़ी फजीलत, कयामत तक, डे ऑफ जजमेंट तक। अगर आज रसूल का जनरेशन है, अगर सूरह कौसर की तफसीर है, ये नहीं कि सूरह कौसर खत्म हो गया, नहीं, कयामत तक जैसे कुरान बाकी है, कुरान का ये सूरा बाकी है, और सूरह की जो तफसीर है वो औलाद रसूल से शुरू हो रही, जिसकी पहली जो तफसीर कुरान सूरह कौसर की जो पहली तफसीर बनकर दुनिया में आया, जो खदीजा की नस्ल को लेके आगे बढ़ा, जो अल्लाह के रसूल के नस्ल को, जनरेशन को लेके आगे बढ़ा, जो पहली कुरान की तफसीर बनकर आया, उसका नाम हसन इब्ने अली है, जो मेरा दूसरा इमाम है। एक सलवात पढ़े मौला हसन के नाम पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। ये सूरह कौसर की तफसीर बनकर मौला हसन दुनिया में आए थे, मौला हसन दुनिया में आए थे 15 रमजान को, मेरी टॉपिक नहीं, 2 हिजरी 15 रमजान को मेरा मौला हसन की विलादत है, जब सूरह कौसर की तफसीर, अब वहां से जो नस्ल चली आज तक बाकी है, और कयामत तक बाकी रहेगी। ये बीबी जहरा की फजीलतों में से एक फजीलत है कि नस्ल बीबी फातिमा, अल्लाह ने फितरत को बदला, अल्लाह ने नेचर को बदला। आप समझे मेरी बात में क्या बोल गया, अल्लाह ने फितरत को बदला, नेचर को बदला। आज हमारी नस्ल कैसे चलती दुनिया में, बेटे से चलती, बेटी से नहीं चलती। अगर बेटा है तो आपका जनरेशन आगे बढ़ेगा, क्या भी करेगा आपके नाम को, फिर बोलो, अगर बेटा नहीं है, बेटी हुई आपको, तो आपके नाम को कैरी नहीं करेंगे, बेटा कैरी करेगा। लेकिन अल्लाह ये नहीं करना कि मुझे बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए, कभी नहीं बोला। हमेशा दुआ करना कि अल्लाह जो तू औलाद दे सेहत के साथ, हेल्थी बेबी दे, ये बोलो, जो दे तो हेल्थी दे, सेहत के साथ और ईमान के साथ। इसलिए कि बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह की रहमत है, बेटी को अल्लाह ने रहमत बना दिया, बेटी को अल्लाह ने रहमत बनाया, बेटे को नेमत बनाया, कभी नहीं घबराना, जो अल्लाह दे उसका शुक्र अदा कर। ये नहीं बोला ये कंडीशन ही रखना मुझे ये दे या ये दे, ये चौथे माप का इरशाद। जब मौला के पास विलादत होती थी और कनीज या गुलाम आके बोलते थे कि मौला आपके घर में विलादत हुई, बस मौला, और उसके बाद वो आगे बोलते थे कि बेटा या बेटी, मौला ऐसा हाथ करते थे, हाथ करके बोलते थे, ये बता सेहत के साथ है, हेल्दी है, तो बोलते थे कि हाँ सेहत के साथ, मौला फौरन सजदे शुक्र में चले आते और कहते अल्लाह तेरा शुक्र है। ये भी एक हमारे लिए पैगाम है, ये भी एक मैसेज है, फौरन शुक्र अदा करते और कहते अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दी है। ये नहीं कहा कि बेटा दिया है या बेटी दी थी, बल्कि कहा अल्लाह तूने सेहत के साथ दी, अल्लाह तेरा शुक्र। ये हमारे लिए भी दर्स है कि जब भी औलाद हो ना, तो मर्द हजरात को बोल रहा, मैं ये सिर्फ जेंट्स को बोल रहा, ये मत बोलो ओ मुझे बेटी हुई मैं क्या करूं अब। नहीं, उस तुम्हारी वाइफ की गलती नहीं है, तुम्हारी बेटी की गलती, बीवी की गलती नहीं है, ये तुम्हारी भी गलती है। गलती किसी की नहीं है, मुझे माफ कर दे, गलती किसी की नहीं है। अल्लाह जिसको जो देना चाहे वो लो, तुम कोशिश कर लो कि बेटा, और अल्लाह देना ना चाहे उसके लिए आमाल है, उसके लिए दुआएं हैं, आप वो दुआएं पढ़े, आपको अल्लाह बेटा भी अता करता, ऐसा नहीं है। आप दुआएं रखी गई इसलिए, तुम्हारी तकदीर को बदलने के लिए दुआ रखी, दुआ का मफहूम ही यह है कि तुम्हारी तकदीर बदले। अगर कोई, अब ये बात में बात आई है तो सुन लो, अगर कोई बेटा चाहता है, बेटा या बेटी, पहले बेटे के बारे में बोलो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुमको औलाद में बेटा आता, बेटो तुम नमाज शब पढ़ो, बेटी चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो, आप बोलेंगे नमाज शब से बेटे से या बेटी से क्या मतलब है, क्या रिलेशन है बेटे से या बेटी से नमाज शब में। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास को नमाज शब में मांगा था, तो आप दुआ करो नमाज शब पढ़ के कि परवरदिगार तुझे मौला अब्बास का वास्ता, तू मुझे बेटा अदा कर और मैं उसका नाम अली अब्बास या अब्बास अली रखू, या ये नियत करो कि अल्लाह तू बेटा अदा करेगा तो तेरे हबीब का नाम मोहम्मद। हमारे पास मफातिहुल जिना में दुआएं कि जब प्रेगनेंसी के 4 महीने हो जाएं तो औरत अपने पेट पे हाथ रखे, वो छोटी सी दुआ है, अगर कोई किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करो, आई विल सेंड इट। पेट पे हाथ रख के दुआ पढ़ो अल्लाह बेटा अता करता, तो ये उसमें शर्त ये कि ये नियत करना कि मैं अपने बेटे बेटे का नाम मोहम्मद रखूंगा, अल्लाह के रसूल का नाम रखेंगे, पुकारना भी मोहम्मद। ये बेटे के लिए, और बेटी के लिए क्या है, बेटी के लिए ये भी नमाज शब है कि शब नमाज पढ़ो और दुआ करो। अगर तुम लड़की चाहते हो, डॉटर चाहते हो, दुआ क्या करो, किसका वास्ता देंगे, इसलिए कि मौला हुसैन ने बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा था, मौला अली अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास को नमाज शब में मांगा, इमाम हुसैन ने बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा था कि परवरदिगार तू मुझे एक ऐसी बेटी अदा कर कि जो मुझसे मोहब्बत करे और मैं उससे मोहब्बत करूं और तेरी मोहब्बत में मैं उसको छोड़ के तेरी राह में आ जाऊं। तो ये बीबी सकीना की फजीलत, अगर कोई बेटी चाहते तो दुआ करे नमाज शब में, औरत दुआ करे और मर्द दोनों दुआ करे, दुआ करके बोले कि अल्लाह तू इस नमाज का वास्ता और इमाम हुसैन की इस मजलूम बच्ची का वास्ता, बीबी सकीना का, और मैं अगर तू मुझे बेटी अता करेगा तो मैं उसका नाम सकीना सकीना रखूंगी, सकीना जहरा या नरजिस जहरा या सकीना अब्बास, ऐसे नाम रख। बारह, तो ये मेरी टॉपिक नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा कि नमाज शब से ये दोनों फायदे होते, औलाद भी होते, रिस्क का फायदा है, लेकिन फिर एक दफा दो एक मिनट सुन ले, नमाज शब की फजीलतों में से एक फजीलत ये कि तुम्हारा रिस्क खुल जाता और लहत की पहली रात में बेहतरीन नमाज नमाज शब है, कि फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में जो नमाजों में जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली नमाज है वो शब नमाज है। अगर आप लंदन में 9 बजे सो जाते, इफ यू स्लीप एट 9 o'clock इन UK, इफ यू स्लीप एट 9 o'clock इन UK, यू कैन रेसाइड नमाज शब एंड यू कैन गो टू योर बेड। इवन नमाज शब में अगर इफ यू कैन नॉट रेसाइड 11 रकत, देन यू कैन रेसाइड 3 रकत, एटलीस्ट 3 रकत, 2 रकत शिफा की पढ़ो, 1 रकत वितर की पढ़ो, और पढ़ के आप दुआ करके आप सो जाओ। अगर तुम 40 नाम, इफ यू कैन नॉट टेक 40 नेम्स, डजंट मैटर, यू कैन टेक जस्ट 10 नेम्स, उसमें भी नमाज होती। अगर 300 टाइम्स इफ यू कैन नॉट से अलफो 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 अलफो, यू नो व्हाट डज इट मीन ऑफ अलफो, अलफो मीन्स फॉरगिव मी फॉरगिव मी फॉरगिव मी फॉरगिव मी। अगर इफ यू कैन नॉट से 300 टाइम्स, यू कैन से 70 टाइम्स, डजंट मैटर। अगर 40 20 نام نہیں لے سکتے 10 نام لو. چوتھے امام 2000 نام لیتے تھے. کئی شارٹیسٹ وے میں بتا رہا آپ کو, 2 رکعت شفا پڑھو اور شفا پڑھو پھر بی بی کی تسبیح پڑھو, 1 رکعت وتر کی پڑھو, 10 نام لے لو کالی, کوئی مشکل نہیں ہے. کتابوں میں تو کافی تفصیل ہے, میں شارٹیسٹ وے بتا رہا, شارٹیسٹ وے. کیوں؟ یہ نماز 10 منٹ میں آپ کو ہو سکتی, ان 10 منٹس یو کین ریسائٹ نماز. یاد رکھو یہ نماز شب جو ہے تمہاری زندگی کو بدلے گی, یو کے میں تمہاری ڈیسٹینی کو بدلے گی. آج کل جو یہ وائرس آیا ہوا ہے یو کے میں, اللہ میں دعا کر رہا کہ پروردگار یہ وائرس ختم ہو جائے. مومنین کی, انسانوں کی, ہیومینٹی کے لیے دعا کر رہا کہ دنیا بھر کے سارے انسان اللہ ان کو بچا لے, یہ کرونا وائرس سے بھی بچا لے, اور یہ جو نیا وائرس آیا اس سے بھی سب کو بچا لے, انسانوں کو بچا لے. اس لیے کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں کہ جو سیویئر آف ہیومینٹی ہے. ہم انسانیت کی بات کرتے, ہم ہیومینٹی کی بات کرتے, ہم کسی ایک انڈیویجل کی بات نہیں کرتے. میں سب کے لیے دعا کر رہا, میری مدد لائف الہبیت چینل لندن سے آ رہی تو سبھی سن رہے, ہر کمیونٹی کے لیے دعا کر رہا, انسان کے لیے دعا کر رہا, ہیومن بینگز کے لیے دعا کر رہا کہ اللہ ان کو اس وائرس سے بچا لے, اس بیماری سے ہم سب کو بچا لے اور ہم کو پروٹیکشن دے. اس لیے کہ اونلی یو کین پروٹیکٹ اس, یہ ہمارا بلیو ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی ہم کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. بس دعا کرو کہ اللہ یہ وائرس سے سارے انسانوں کو بچا کے اس دنیا میں پیس کو لا دے. ایک سال اور پڑھ لے محمد والے محمد. بس دوستو میرا وقت 45 منٹ کی مجلس تھی, وقت تیزی سے نکلتا جا رہا, آلموسٹ 42 منٹس کی مجلس ہو گئی. اہل بیت چینل پہ ایک ریکویسٹ کرتا, کل مجلس یہیں سے شروع کروں گا. ابھی بی بی خدیجہ کا ذکر کل بھی چلے گا, سیکنڈ مجلس. یہ سیرت بی بی زہرہ ہی ہے, اس لیے کہ جب تک تم خدیجہ کو نہیں سمجھو گے تو بی بی زہرہ کو کیا سمجھو. بی بی زہرہ کی زندگی کا جو مین رول ہے ان کی ماں کا رول. بی بی خدیجہ الکبریٰ کی وہ صفات ہیں جو شہزادی کونین نے کیا, اس لیے کہ ماں کی صفات, ماں کی کوالٹی بیٹی میں آتی ہے. اور ایسی ماں کہ بی بی خدیجہ کو میں بار بار کہہ رہا لاکھوں سلام ہمارے اوپر. بس ایک دوسری ریکویسٹ کر رہا سارے سننے والوں کو اہل بیت چینل کے اوپر لندن سے, کہ یہ انتہائی بڑے مورننگ ڈیز ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, انتہائی بڑے مورننگ ڈیز ہے, غم کے دن ہے, یاد رکھو. یہ وہ روایت ہے 75 ڈیز والی روایت کے میں مدی سے پڑھو. صرف یہ تصور کرو کہ میری مظلوم ماں بی بی زہرا 75 دن 75 ڈیز میں شہید ہو گئی. صرف 75 ڈیز میں رسول کے بعد 28 سفر 11 ہجری 11th ہجری اللہ کے رسول کی شہادت ہے, اور 13th یا 14th جماعت الاول جو یہ دن ہے میری شہزادی کی شہادت ہے. اس کو چھوٹا مت سمجھو, جو چھوٹا سمجھے گا وہ ذلیل اور اتنی بڑی بات کر رہا, ذلیل اور رسوا ہوگا. آگے کی مدی سمے آئے یہ سب خاندان اہل بیت کا سب سے بڑا غم ہے کہ اللہ کا رسول ننگے سر ہے, میرا مولا ننگے سر ہے, چھوٹے چھوٹے بچے حسن اور حسین, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم یتیم ہوئے. اتنا بڑا ظلم ہے کہ بی بی زہرا کے پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا. میری خواہش آپ سے, ہر سننے والا جو اہل بیت چینل لندن سے مجھے سن رہا, کہ ان 5 مجالس میں آج پہلی مجلس ہوگی اس کو سپانسر کرو. میں اپنے لیے نہیں بول رہا, ڈونٹ تھنک کہ میں اپنے لیے بول رہا, میں آپ کے لیے بول رہا. کیوں؟ یہ اتنا بڑا غم ہے کہ آج کل وائرس کی وجہ سے تم لوگ عزاخانوں میں نہیں جا رہے, عزاخانوں میں مجلس نہیں کر رہے. آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا نام ان لوگوں میں لکھا جائے جس نے مادر حسنین کی مجلس کی, غم کی. آپ کیا سمجھ رہے یار, کیا سمجھ رہے؟ تمہاری زندگی کے سارے حالات صحیح ہو جائیں گے, تمہاری زندگی کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر تم بی بی زہرا کی مجلس کرو گے. کوئی مذاق نہیں ہے, سب کو نصیب. یہ مت بولو کہ تم نہیں کرو گے تو مجلس نہیں ہوگی. اف یو ڈونٹ اسپانسر یو تھنک کہ مجلس نہیں ہوگی. کوئی ذکر معصوم کو روک نہیں سکتا, اس کا وعدہ اللہ کا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں, اگر اف یو آر گیٹنگ چانس to sponsor the majlis, you are the luckiest person on the earth. आप क्या समझ रहे? मैं यूं ही बोल रहा हूं, इसलिए कि हो सकता है ये एक मजलिस तुम्हारी बख्शीश का सहारा बन जाए। कल तुम बोल सकोगे, बीबी मैंने आपकी एक मजलिस की है। जमाने के इमाम को अगर राजी करना है, फरजंद जहरा को राजी करना है, आप पे लाजिम है कि गम फातिमा जहरा में शरीक हो जाओ। आजकल यूके में, यूरोप में, इमाम बारगाह में ये वायरस की वजह से मजलिसें नहीं हो रही ना, ऑनलाइन हो रही ना। हजारों लोग मुझे अहले बैत चैनल पे इस वक्त सुन रहे। मैं सबसे बोल रहा हूं, व्हाट इज 72 पाउंड्स, व्हाट इज 72 पाउंड्स, क्या वैल्यू है 72 पाउंड्स की? कोई वैल्यू है? लेकिन तुमने अगर बीबी जहरा को 72 पाउंड्स दिया, अपने मरहूमीन को इसका फायदा पहुंचाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन तुमको दुआ देंगे कि तुमने बीबी जहरा की। इंशाल्लाह कल बोलूंगा और कल की मजलिस में, बस ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की मजलिस होगी। बात में यहाँ रोक रहा, मेरी ख्वाहिश आप फ़ोन करें, आप फ़ोन करके इन मजलिसों को स्पॉन्सर। अभी चार मजलिसें और बाकी, बीबी की शहादत की जब मजलिसें आएंगी करीब जब होंगा, तो उस वक्त आखिरी मजलिस में और चौथी और पांचवी मजलिस में शहजादी कौलैन के मसाइल पढ़ूंगा। आज उनके बच्चों का जिक्र कि जिसको फातिमा ने चक्कियों को पीस के पाला था, बीबी जहरा उस मजलूमा का नाम है दोस्तों, उस गरीब बीबी का नाम फातिमा है कि जो 18 साल के सिन में हाथ में स्टिक लेके चल रही थी। आपने सुन लिया, मैंने बोल दिया, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। ये वो बीबी है दोस्तों जिसको मुसलमानों ने रोने नहीं दिया। बाप की शहादत के बाद, रसूल के बाद होना तो ये चाहिए था मदीने के सारे मुसलमान फातिमा के दरवाजे पे आके बाप का फुरसा देते कि आपके बाबा हमारे रसूल अल्लाह के, जिनका एहसान है हमारे पर, जिनका हम कलमा पढ़ते, उनकी शहादत हुई, बेटी को बाप का पुरसा। दुनिया में दस्तूर क्या है दोस्तों? दुनिया में दस्तूर हर मजहब में ये है, हर मजहब में ये, दुनिया के सारे मजाहब में। उसके बाद इंसानियत का पैगाम ये कि अगर किसी का बाप मर जाए, किसी की माँ मर जाए, तो जाके बच्चों को पुरसा दे। इस्लाम क्या कहता कि जब जाओ किसी का बाप मर जाए तो उनके बेटों के सर पर हाथ रखो और बोलो कि हम तुम्हारे गम के शरीक। अल्लाह का रसूल बोलता कि अगर तुम जाकर किसी यतीम को बाप का पुरसा दो, किसी यतीम, जो गौर जुमले गौर से सुनो, किसी यतीम को बाप का पुरसा दो तो तुमने उस बच्चे उसका पुरसा नहीं दिया, उसके बाप का पुरसा नहीं दिया, बल्कि मेरी औलाद का, मेरे बेटे का पुरसा मुझे दिया। इतना सवाल। लेकिन इन जालिमों ने क्या किया, जाकर बीवी के दरवाजे पर पुरसा नहीं दिया बल्कि फातिमा के दरवाजे को जला दिया। फातिमा, मैंने कितनी आसानी से ये जुमला बोल दिया और आपने सुन लिया। बीबी जहरा के दरवाजे को जलाने वालों जो भी थे, मैं नाम तो नहीं ले सकता, तारीख में सारे नाम मौजूद हैं, बीबी के दरवाजे को जला दिया और जला के फातिमा के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा। इंशाल्लाह जब मैं बीबी की शबे शहादत की मजलिस पढ़ूंगा, फोर्थ और फिफ्थ मजलिस में, मैं बीबी जहरा के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो शहीद शहादत के वाकयात पर, कौन पढ़ सकता फातिमा पे? बल्कि इसलिए कि बीबी फातिमा का खुद ये इरशाद है, खबर जब दरवाज़ा गिर गया तो मेरी शहजादी ने खबर रसूल को, अल्लाह के रसूल की ग्रेव को देख कर कहा था कि बाबा आपके बाद वो मसायब पड़ गए बाबा, कि अगर ये दिनों पे पढ़ते तो तारीख रातों में, अंधेरी रातों में बदल जाते। ये कौन कह रहा? सिद्दीक़ा कह रही, वो फातिमा कह रही जिसको रसूल अल्लाह ने सिद्दीक़ कहा है, वो रसूल जिस रसूल ने जिसको सिद्दीक़ कहा है, कि वो बीबी कह रही बाबा आपके बाद वो मसायब गिर गए कि अगर दिनों पे पढ़ते तो तारीख रातों में बदल जाती। बस दोस्तों, आज बीबी जहरा की उस मजलूम पोती का जिक्र सुन लो कि जिसकी शहादत और फातिमा की शहादत में बड़ा हमाहंगी है, जैसे फातिमा के ताबूत में, जैसे बीबी जहरा का ताबूत में सिर्फ घर वाले थे और घर के अंदर ही ताबूत उठा, फातिमा की इस पोती का भी यही हाल था कि अजीजो जिंदान में है, 4 साल की बच्ची है, अरे कफन भी नहीं मिला, बल्कि उसके जब बीबी की मैयत उठी तो कोई साथ नहीं था दोस्तों, कोई बाहर वाला नहीं था, बल्कि अपने भाई के हाथ पे बहन की मैयत थी। और जैसे ही ग्रेव के करीब चौथे इमाम अपनी इस बहन की मैयत को लेकर गए, आप सिर्फ तसव्वुर करो कि माँ भी साथ जा रही। अभी कुछ लम्हे पहले सकीना माँ की आगोश में है, आज इस मैयत इस वक्त मैयत है। बीवी रबाब सर पीट के रो रही थी, सारी सैदानियाँ तड़प तड़प के रो रही थी। सकीना का एक एक जुमला याद आ रहा था, सकीना की वो तड़प याद आ रही थी जो अपने बाबा को कह के रोती थी कि बाबा आके देखो कि आपकी सकीना पे क्या हो गया। जब भाई ने हाथ में बहन की मैयत उठाई और जैसे ही ग्रेव के करीब पहुंची, शहजादी जैनब ने करबला का रुख किया और कहा कि अब्बास सकीना दफन हो रही है, अब्बास सकीना दफन की जा रही। दोस्तों खबरें, अब सकीना से दो हाथ बुलंद हुए, अल्लाह मेरी बेटी को मेरे हवाले करो। जरा कोई रबाब के दिल से पूछे कि माँ देखती रही, अरे गोद में खिलाती थी, माँ देखती रही कि बच्ची को सुपुर्द खाक कर दिया गया, शहजादी की छोटी सी लहत बनी। और जब चल रहे हटा काफिला, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, जब रिहाई का वक्त आया था और ताजे सारे तबरुकात आए, दोस्तों जब जैनब ने सकीना की चादर को उठाया, कानों के गोशवारे वापस आए, तो जैनब सकीना की चादर और गोशवारों को ला के कब्रे सकीना पे रखा, रख के कहा कि बेटी ये तुम्हारी चादर है जो वापस आ गई, बेटी ये कानों के गोशवारे कि तुम्हारे कान अब तक जख्मी हैं, बेटी तुम तड़प तड़प के रोती थी कि भूभी अम्मा मेरे कान जख्मी हैं, मेरे रुखसार नीले हो गए तमाचे खा खा के, कान जख्मी हो गए, ये वो गोशवारे हैं। चादर को रखा, रबाब ने अपने रुखसारे को कब्र सकीना पे रख के कहा, बेटी बड़ी ख्वाहिश थी तुमको वतन जाने की, अब हम लोग वतन जा रहे। उसके बाद जैनब ने शाम की औरतों से कहा कि बे बीबियों सुनो, मैं अपने दिल के टुकड़े को छोड़ के जा रही, अरे मेरी बेटी की लहत पे आना। अजीजों वो अंधेरे में सकीना की छोटी सी लहत, फातिमा की इस पोती की छोटी सी लहत, अल्लाह हमको ज्यारत नसीब करे और अल्लाह सैदानियों के रोजों की फरमाए। आज भी सकीना का रोजा इतना शानदार माशाल्लाह है और वहीं पे इतना ठंडा पानी मिलता है। दोस्तों जब जाहिर से कब्रे सकीना पे चिल्ड वाटर पीता है तो ये एहसास होता, अरे ये बच्ची इस पानी के लिए कितना तड़प रही थी। अब्बास के बाद सकीना ने पानी नहीं मांगा, इतनी प्यासी रह गई कि लोग तरस खा के गए, ये बच्ची कितनी प्यासी है। इलाही व सैयदी व मौलाया, परवरदिगार मेरी शहजादी ये कौनैन बीबी जहरा का वास्ता, मेरी शहजादी मेरी मजलूम शहजादी फातिमत जहरा सलाम अल्लाह का वास्ता और उनकी पोती बीबी सकीना का वास्ता, ये आवाजों पर रहमत नाजिक करे। ये हमारी मजलिस अहले बैत चैनल लंदन से जो लाइफ आ रही, परवरदिगार इस मजलिस को बीबी जहरा की बारगाह में कबूल कर। अल्लाह ये मजलिस जिन जिन लोगों ने आज की मजलिस का स्पॉन्सर किया, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, उनके रिस्क के दरवाजे खोल दे, परवरदिगार उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए, परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। बीबी जहरा के नाम पर हम पे जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर कर दे, जो रिस्क के प्रॉब्लम है उनके रिस्क के दरवाजे खोल दे। अल्लाह तो जन्नतुल्बकी जन्नतुल्मौला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोजों की हिफाजत फरमा। जनाब बाखर जैदी साहब और उनकी अहलिया को सलामत रख। मेरे इमाम जमाना फरजंद जहरा को सलामत रख। परवरदिगार दुनिया भर में जहाँ जहाँ मौला हुसैन का चाहने वाला है उसकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे हम सब का खातिमा ईमान पर, आमाल ऐसे हों कि बीबी जहरा हमसे राजी हो जाए। इमाम के जहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा आज की मजलिस के जो जो स्पॉन्सर्स हैं उनके सारे मरहूमीन के लिए, और जनाब डॉक्टर बाखर जैदी साहब की वालिदा, उनकी अहलिया के सारे मरहूमीन, अपने अपने सारे मरहूमीन जिनकी भी पहली रात है उनके लिए। और आज हैदराबाद में एक बहुत अच्छे नौए खान जनाब असकर अली खान साहब का इंतकाल हुआ, उनके लिए भी पढ़ दें बिस्मिल्लाह। मेरे वालिदैन के लिए भी पढ़ दें बिस्मिल्लाह।